राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारिज गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारिज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही जय। इस्कान प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की ही जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की ही जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की ही जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। चैतन्य चरितामृतम की जय। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री माधवेंद्र परिपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेवाय प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष दिन है। क्या दिन है आज? अक्षय तृतीया और साथ साथ इस्कन में विशेष रूप में किस लिए प्रसिद्ध है? चंदन यात्रा प्रारंभ हो रहा है। तो आप पहले अक्षय तृतीया के बारे में सुनो कि चंदन यात्रा के बारे में पहले सुनोगे? दोनों का बारे में बताना है? दोनों के बारे में सुनोगे? ठीक है। हम एक श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, चैतन्य चरिता में तक है मध्य लला की चौथा अध्याय से माधवेंद्रपुरी की भक्ति। इस अध्याय के 106 नंबर जो पद हैं, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। माताएं मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ा। शब्दार्थ गोपाल, गोपाल अर्च विग्रह, ये कौन है गोपाल? माधवेंद्रपुरी के गोपाल। और अभी कहाँ पर है? श्रीनाथ जी के रूप में गुजरात अन्य राजस्थान में नाथद्वारा में। तो ये गोपाल कह रहे अर्च विग्रह माने श्रीनाथ जी रूप में अभी जो है वही गोपाल पहले गोवर्धन में थे, गोवर्धन के ऊपर उनका मंदिर आज भी है चित्रपुरा के ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो वो गोपाल कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं। तो गोपाल कहे ने कहा, पूरी मेरे प्रिय माधवेंद्रपुरी, आमार मेरा ताप शरीर का तापमान नहीं नहीं जाए जाता है, मलय ज चंदन, मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का लेप शरीर पर लेप करो, तबे तब से बह जुड़ाय ठंडा होगा। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मौलाय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। दोहराइए, सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य, गोपाल अच्छा विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है, यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ को भी कभी कभी मलय पर्वत कहा लेते हैं। मलय जो शब्द मलय प्रदेश प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है, कभी कभी वर्तमान के मलेशिया देश को भी मलय कहते थे। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था, कौन सा देश में, किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष लगाने के अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं और मलेशिया, जावा और इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति प्राय लुप्त हो चुकी है। हरे कृष्ण। तो हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो हम चंदन यात्रा महोत्सव मना रहे, इसकी प्रणेता बाई ये चंदन यात्रा महोत्सव को कौन प्रारंभ किया था, श्री माधवेंद्रपुरी है। कहाँ पर प्रारंभ किए थे, खीरचोर गोपीनाथ, लेकिन चंदन मांगा कौन, गोपाल, कहाँ मांगा, गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे हैं। ये चंदन मांगे गोपाल इधर और चंदन लगाया कहाँ, खीरचोर गोपीनाथ में, ये कैसा है, हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, बाद में कहेंगे गोपाल कहेंगे हैं। गोपीनाथ हमारा जे एक ही देह है, हम दोनों का एक ही शरीर है, दो हम दो व्यक्ति नहीं कि दो शरीर नहीं है, हैं। यहाँ के चंदन देले हमारा ताप हवे क्षय, यदि तुम गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप करोगे, मैं यहाँ पर गोवर्धन में जो गोपाल के रूप में बैठा हूँ, मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, हैं। ओके, तो गोपाल ने का शरीर गर्म हो गया, क्यों गर्म हो गया, गोपाल की सेवा तो पहले चलता था, वज्रनाभ इनके विग्रहों को गोवर्धन की पर्वत के ऊपर स्थापित करके मंदिर, सुंदर मंदिर भी बना दिया था, लेकिन मुसलमान लोग के आक्रमण से उनके पुजारी लोग ने सब डर के भाग गए और गोपाल को कहाँ रखे थे, शंकरसुण कुंड आज भी है, शंकरसुण कुंड के बाजू में जहाँ पर गोपाल जी का विग्रह मिला था वो स्थान आज भी है, तो झाड़ी के अंदर में छुपा दिए, मिट्टी और घास फूस में ऐसे छुपा के भाग गए, तो इसलिए गोपाल वहीं पर पड़े हुए थे कई सालों तक। नहीं, लोग जानते थे कि गोपाल यहाँ पर था, सब ब्रजवासी लोग को पता था, कहाँ गए गोपाल, ढूंढते थे कि कोई किसी को मिला नहीं, लेकिन गोपाल को तो कोई प्रेमी भक्त आएगा उनका सेवा चाहिए ना, और कोई ऐसा सेवा करने वाला होगा छोड़ के भाग जाएगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए वो उसी के अंदर पड़े थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी हैं ईश्वरपुरी के गुरु महाराज हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजन इन्होंने ही पहले शुभारंभ किया, कौन, माधवेंद्रपुरी, इसका पहले कोई राधा कृष्ण पूजा नहीं करते थे। सबसे पहले वो माधव संप्रदाय के सन्यासी थे, लेकिन माधव संप्रदाय में केवल एकला कृष्ण को पूजा करते हैं, उडुपी में एकला कृष्ण है, नहीं कहीं है तो कृष्ण, कृष्ण के साथ में सत्यभामा नहीं तो रुक्मणी, रुक्मणी कृष्ण पूजा करते हैं, राधारानी की कोई पूजा नहीं करते। लेकिन माधवेंद्रपुरी पहले आपने शिष्य अद्वैत आचार्य कहा कि आपने घर में श्याम सुंदर के साथ किसको रखो, राधारानी को रखो, इसलिए उन्होंने गुरु अपने शिष्य के माध्यम राधा कृष्ण की सेवा प्रचलित किया था। जो भी थे माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते ब्रज में पहुंचे और गिरिराज की परिक्रमा की है। माधवेंद्रपुरी भ्रमित आईला मथुरा नगरी, ऐसे मथुरा नगरी पहुंचे, फिर आस्ते गोवर्धन में आए। सभी लोग जो ब्रज में आते थे गिरिराज की परिक्रमा करते, तो गिरिराज की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास में आज भी माधवेंद्रपुरी का बैठक है, कदम वृक्ष है उसके नीचे बैठे थे कौन, माधवेंद्रपुरी। लेकिन उनकी अजाचित वृत्ति था, कभी किसको मांगते नहीं थे, हैं भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। आजकल कोई साधु ये सोचता है? लेकिन माधवेंद्रपुरी की ऐसा ही था, अजाचित वृत्ति था, किसी को मांगते नहीं थे, हैं कोई भगवान की इच्छा से कोई दिया तो खाएंगे, नहीं दिया तो अपने भजन करते रहते थे। गोवर्धन परिक्रमा करके शाम हो गया, बैठे थे अपने भजन करते थे, माला में माला करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शाम के समय ये ग्वाला आया, हाथ में एक दूध की लोटा पकड़ा है और लाठी है, बांसुरी भी है कंबर में, और बड़े दिखने में बहुत सूरत लड़का है, बहुत सुंदर है, किशोर वयस्क के लड़का, 13-14 साल के लड़के हैं। आया आके बड़े मुस्कुराते हुआ, ए बाबा क्या ध्यान करता है, क्या तप क्या करता है, क्या भजन करता है, क्या ध्यान करता है, अरे ब्रज में जो आता है वो मांग की खा लेता है, माधुकरी कर लेता है, अरे भूखे में थोड़ी गोपाल का भजन होता है। तो बोला कि तो उसको देखे माधवेंद्र पूछ ले, अरे इतनी आकर्षक लड़का है, मैं कैसे आकर्षित हो जाता हूँ ये लड़का के प्रति। फिर भी थोड़ा धैर्य धारण करी कहे कि तुझे कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ। कृष्ण कहे कि भक्त के पास में छुपना बड़ा कठिन है। तो कहे कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ये माताजी लोग सब आए थे इधर स्नान पानी लेने गोविंद कुंड में आए थे, वो लोग ने सब मुझे बताया कि देखो ये बाबा एक बैठा लगता है कुछ खाया नहीं, सब तो मांग कर खा लेते माधुकरी करके, जो अजाचित वृत्ति वाला को मैं ही ला के देता हूँ, जो किसको न मांग कर रहते अजाचित वृत्ति देने का। तो इसलिए माताजी लोग मुझे ये दूध का लोटा दिया, कहा कि लेके बाबा को दे दो, लेकिन मेरे को बहुत काम है आगे, मेरे से गाय को सब लेके इनको लेके अपने गौशाला में पहुंचाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, तुम बाबा दूध पी के लोटा धो के रख देना, मैं बाद में ले लूंगा। हैं ये कहे कि तुरंत ही भाग गए माधवेंद्रपुरी हटात। हैं तो पूछे थे कोई तू घर तेरा घर कहाँ है, बोल बोला था मैं इस गाँव में ही रहता हूँ, मेरा नाम गोपाल है, इसी गाँव में रहता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी वो जाने के बाद बोले कि कैसा लड़का है, इतनी आकर्षक कैसे, मैं तो कभी किसके प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन ये लड़का मुझे आकर्षित कर लिया मीठे मीठे बात करके। ठीक है वो तो आएगा लोटा लेने, तो फिर तब उसको सब डिटेल इसका खबर लूँगा। कहा कि वो लोटा में जो दूध था दूध को पिए, जो दूध को पिए इनके शरीर पूरा अष्टसाथी के विकार में पुलकित होने लगा। बोले यार जिंदगी में कितना दूध पिया हूँ, लेकिन ये दूध का क्या अपूर्व स्वाद है और इसके क्या अपूर्व गुण है, इसको पीते ही मेरा भूख और प्यास सब कुछ मिट गया, मेरे शरीर में अष्टसाथिक विकार प्रकट हो गए, बलात्कार से मेरे मुख से क्या निकाल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण, ये कुछ है जो अद्भुत बालक है, इसके कुछ रहस्य है सोचकर और लोटा को धो के फिर रखे रखी बैठ गई। जज आया लड़का आएगा लोटा लेने के लिए, इसलिए बैठकर जपा कर रहे हैं, महामंत्र जप रहे हरे कृष्ण है। लड़का क्यों आए, पूरे रात बैठ के वेट करते करते उसी को प्रतिक्रिया करके आता नहीं, बैठ के जप कर रहे। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आंख झपसा नील लग गया, तभी हाँ तुरंत इस नींद में स्वप्न में देखे वही गोप जो बालक दूध लेके आया था लोटा, वही बालक आया माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ी, कहा कि बाबा देख मैं कौन हूँ, तुमको जानना चाहता ना, चलो। हाथ पकड़ के ले गया वो झाड़ी के नीचे जहाँ पर गोपाल का विग्रह पड़ा था। कह देख मेरे जो प्रपौत्र ब्रजनाभ ने मुझे स्थापना किया था इसके ऊपर, ये गोवर्धन के ऊपर, और पुजारी लोग तो मुझे ही झाड़ी में फेंक कर भाग गए मुसलमान के भय से। अभी मैं कितना दिन से प्रतीक्षा करके बैठा हूँ, कब माधवेंद्रपुरी आएगा और तू जैसे प्रेमी भक्त आएगा तभी तो मेरी सेवा चलेगा। इसलिए मैं कब माधवेंद्र आएगा और मुझे मेरी सेवा पूजा फिर प्रचलन करेगा। प्रतीक्षा करके ही झाड़ी का नीचे में कितनी गर्मी वर्षा सहन करके पड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो। ये झाड़ी का से निकाल कर गोवर्धन पर्वत की पर मुझे अधिष्ठित कर दो जहाँ पर मेरे प्रपौत्र बजरनाभ ने मुझे प्रतिष्ठित किया था, और बाद में तुम मेरी सेवा पूजा का भी प्रतिबंध व्यवस्था करना। माधवेंद्रपुरी वो गांव में गए, गांव लोगों को सब इकट्ठी किए, कहे कि देखो तुम्हारा जो गोपाल है ना, तुम्हारे गांव की जो देवता है गोवर्धन का देवता है, ब्रज के मालिक है गोपाल, वो ये झाड़ी के अंदर में है, कल रात को मुझे स्वप्न में कहा है, चलो सभी चलो मेरे को सहायता करो, ये तो बहुत घंच सो कंटा है जंग, मैंने इसको सो काटना पड़ेगा वृक्ष को, सो काट के अंदर साफ करके गोपाल को ढूंढेंगे। लोगों को भी बात पता था गोपाल कहीं कहाँ था, इधर कहाँ गया, सारे उत्साहित होकर गांव वाला निकल गए उनके साथ, जंगल को काट के सफाई किए और ठीक बीच में देख रहे कि थोड़ा सा घास फूस जो अलग करते ही विग्रह दिखाई पड़ा, किसकी, गोपाल के सुंदर विग्रह हैं। आज श्रीनाथ जी के रूप में कितने लोग जाते, हजार संख्या में लोग जाते हैं इनके दर्शन करने। तो कहे कि ये विग्रह गोपाल का विग्रह देखकर माधवेंद्रपुरी तो बड़े आनंद में नृत्य करने लगे, सभी बड़े 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 तागड़े तगड़े लोग सब जो गांव के थे उनको सब सहायता उनके सहायता लेकर उनको उठाए, विग्रह बहुत भारी है इनको उठाकर लेके गए कहाँ तक, गोवर्धन की पहाड़ के ऊपर है जतिपरा के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर लेके गए, लेके गए लेके उधर माधवेंद्रपुरी हैं स्वयं भी इसमें इनसे सहायता करें, उनके हाथ नहीं लगने से गोपाल उठेंगे कैसे, एक पत्थर का ऊपर विग्रहों को रखें पीछे एक बड़ा पत्थर लगकर उनको सहायता करने के लिए है पीछे रख दिए। गोपाल खड़े हो गए, कहे कि गोविंद कुंड से पानी लेके आओ, नया नया आप भाग भाग के लोग सब जानते ही गोविंद इनके अभिषेक होगा इसलिए सब नया नए नए मिट्टी के बर्तन सब लेकर आए, गोविंद कुंड से पानी तो थोड़ा ऊपर कैसे कैसे छोटे 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 सब कैसे वो क्या होता है गोलमल वो सब भासता रहता इसलिए पानी को छान कर ऐसा ही लिखा गया 900 घड़ा पानी ऊपर को लेके गए हैं 900 हैं लेकर लेकर पहले उनको पूरा धोए शरीर को अच्छा से है नहीं पहले फिर टॉयलेट पहले थोड़ा सा तैल भी मालिश किए बहुत सुंदर बहुत तेल कई दिनों से शरीर घास में पड़ा हुआ मिट्टी में उसको चिक्कण किए हैं तेल मतलब सब पूरा डिटेल कहना समझ में ये तो चंद्रन यात्रा की कथा है। तो इसलिए उन्होंने पहले इनको पंचगव्य अभिषेक किए इसके बाद पंचामृत अभिषेक, हमारा जो अभिषेक सिस्टम ये भी माधवेंद्रपुरी ने सिखाया है, पहले पंचगव्य अभिषेक 5 गाय की जो प्रस्तुत दूध दही घी और गोबर गोमूत्र इससे पंचगव्य में पहले अभिषेक, इसके बाद फिर पंचामृत अभिषेक, इसमें से केवल एक दो चीज बाहर का ऐड होता क्या, मधु और शक्कर का जल गुड़ का जल। तो ऐसा ही दोबारा पहले पंचगव्य स्नान पंचामृत स्नान इसके बाद फिर हजारों घड़े पानी फिर ऊपर डालकर दोबारा तेल मालिश के शरीर में आए चुआ चंदन आए तो मालिश करके फिर उनको चिक्कण किए शरीर को और चारों साइड में ऐसे ही इसका बीच में से वो बना दिए थे ऐसे ही टाटा इतने तो तुरंत क्या करेंगे चारों साइड को कवर करने के लिए ऐसे ही वो आज ताड़ के पत्ते होते हैं जैसे कोई चटाई जैसे ऐसे चारों साइड बनाए तो उसको कवर सो कवर करने के लिए गोपाल को स्नान करा दिए। अभी गोपाल को भूख लग गया ना, खाया कि नहीं, कई दिनों से गोपाल खाया नहीं ऐसे जंगल में पड़ा था, इसलिए ब्रजवासी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, 10 लोग केवल क्या बना रहे थे भात बना रहे थे, भात माने पहाड़ के समान जमा अन्न जमा हो गया, और उनको याद आ गया पहले का अन्नकूट, पहले नंद महाराज अन्नकूट किए थे, तो ऐसे पहाड़ के समान अन्न और दाल के तलाव, तलाब गए तलाब जैसे दाल दाल सब्जियाँ, कई वेराइटी का सब्जियाँ कुकिंग करके चारों साइड गोपाल के पहाड़ सब नीचे पत्ता सब लगा धो के अच्छा सब पत्ता डालकर उसी के ऊपर सब डाल के रहे। ऐसा नहीं कोई प्लेट में लेके देंगे प्लेट प्लेट कुछ का, अभी तो गोपाल प्रकट हुआ बस है, सब जमा कर जमा किए और सभी लोग देखते थे। माधवेंद्र विशेष रूप में अनुभव कर रहे थे कि देखते गोपाल ने एक साथ थोड़े समय में ही सब कुछ खा लिया है। पहले खाए थे ना ऐसे अन्नकूट में, पहले भी खाए थे, कब खाए थे और आनी और आनी और आनी और नंद ब्रजवैष्णव को मांगे थे, लेकिन माधवेंद्रपुर देख रहे थे सब खा लिया गोपाल, लेकिन दोबारा ऐसे हाथ स्पर्श करके फिर जैसा था ऐसा ही है फूल प्रसाद रख दिया सबके लिए है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते है। तो इसकी बात माधवेंद्रपुर बड़े प्रसन्न होकर सेवा करते रहे, और कई लोग आसपास के सब मथुरा के राजा कोई भरतपुर के राजा चारों साइड में सब लोग सुने गोपाल प्रकट हो गया, हजार हजार लोग आने लगे, कोई गोपाल के लिए एक मंदिर बना दिया, कोई कोई इसका रसोई घर बना दिया, कोई इनके बेड, सब आस्ते आस्ते गोपाल जी के मंदिर बन गया, सबको सेवा पूजा चलने लगा। लेकिन जिस दिन इन्होंने प्रकट गोपाल को प्रकट करके अन्नकूट किए, दूसरा दिन में दूसरे गाँव वाला और भी भक्त लोग आए, बोले नहीं आज भी अन्नकूट होगा, आज भी चलाओ अन्नकूट करो है। तो ऐसा ही माधवेंद्रपुर बड़े एक्सपर्ट मैनेजर भी थे, भक्ति केवल केवल भक्ति भक्ति तो महान भक्त थे हैं, लेकिन इन्होंने सब गांव वालों को कहा कि सभी लोग एक एक गांव एक एक दिन अन्नकूट हैं, हर लोग एक एक साथ नहीं, ब्रज चौरासी कोस में जितना गांव है सभी गांव वालों को मिलेगा चांस, लेकिन सब लोग को एक एक दिन, इसमें क्या होगा कॉम्पिटिशन होगा किसका भाव सबसे अच्छा कौन खिलाएगा गोपाल को है, किस कौन अच्छा से खिलाएगा। तो डेली फिर गोपाल ने गोपाल के पास हर दिन अन्नकूट होने लगा, हर दिन हजार हजार लोग डेली आकर प्रसाद खाए आए, महोत्सव हर दिन चलते रहा। तभी ऐसा ही तो चलते रहा दो साल, बीच में दो ब्रह्मचारी आए बंगाल से है? अच्छे ब्रह्मचारी है, अच्छे सेवा मैंने निष्ठा के साथ सेवा करते, ब्राह्मण कुल से जन्म हुए, तो उनको देखकर माधवेंद्रपुरी कही कि यह आ गए गोपाल का सेवा के लिए, और माधवेंद्रपुरी को भी दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी उनको दीक्षा देकर गोपाल की सेवा में लगा दिए। हाँ ये भी आस्ते आस्ते वृद्ध हो रहे थे, लेकिन दो साल के बाद एक दिन माधवेंद्रपुरी ये स्वप्न जो आज देखे, आज वो स्वप्न दोबारा देखे, किसको देखे गोपाल, गोपाल की क्या कहा, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाय, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे कि देखो माधवेंद्रपुरी मेरे शरीर का ताप नहीं मिटा है, इतने दिन जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर पड़ा था, तुम्हें इतना तेल मालिश किया और जितने पानी डालने पर भी ये मरीज शरीर में उत्ताप नहीं जा रहा है, तुम एक काम करो मलय ज चंदन लेके आओ है, मलय ज चंदन लाकर मेरे शरीर में लेप करो, गर्म के सीजन में पूरा शरीर लेप करो है। कहाँ से लाएगा मलय ज चंदन, मलय चंदन कहाँ से लाएगा, और भी कहे इतने तो एक एक पद है गोपाल, दूसरे पद में गोपाल कहा मलय ज आन जाया नीलाचल हईते अन्य हईते नहे तुमी चल तोरीते है, कह के मलय जो चंदन वहां से लाना, कहां से, जगन्नाथपुरी से जाके लेके आना, जगन्नाथ जी के शरीर में मलय जो चंदन गर्मी का टाइम लेप दिया जाता है, ये ओरिजिनल क्योंकि उस समय मलेशिया में जाभा इंडोनेशिया इसमें से उड़ीसा से वाणिज्य करने के लिए लोग जाते थे, वो जाकर वहां से यहाँ से चावल अनाज सब लेके जाते थे, वहां से जगन्नाथ के लिए चंदन लोडिंग करके लेके आते थे। हाँ ऐसे प्रभुपाद जी लगते हैं मलेशिया को भी मलय जो चंदन कभी कभी मलय प्रदेश कहते हैं, तो वहाँ पर पहले चंदन होता था है? तो कहे कि वहाँ से जाके लाना चंदन, कहाँ से, जगन्नाथपुरी से, यहाँ से नहीं चलेगा, लुई बाजार का मार्केट उस समय लुई बाजार था नहीं, ये मैसूर का चंदन नहीं चलने वाला, मैसूर चंदन दूसरे इधर उधर का चंदन नहीं, तुम जाकर वो जगन्नाथ के लिए जो चंदन ला कर रखते हैं, जगन्नाथ जी को मालिश अपने शरीर में लेप देते हैं गर्मी का टाइम, वो चंदन यात्रा महोत्सव प्रकृति में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पास से शुभारंभ हुई है। जगन्नाथ की जो द्वादश यात्रा होता है उसमें से सबसे बड़ा उत्सव द्वादश महोत्सव साल में जितने भी उत्सव 12 उसमें मुख्य माना जाते हैं, इसमें से फिर सबसे लंबा जो महोत्सव है वो है चंदन यात्रा। 42 दिन की यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में, चंदन उत्सव कितने दिन होता है 42 दिन, 21 दिन बाहर में 21 दिन अंदर में। बाहर में माने डेली जब जगन्नाथ के उत्सव विग्रह कुल चाहे वो चंदन पुखुर बाबूज कहते नरेंद्र सरोवर वहाँ लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी अपने भक्तों के साथ में जाकर वो चंदन उत्सव में भाग लेते थे हैं कि संकीर्तन के साथ, कभी कभी महाप्रभु निजे पानी में उतर कर भी नौका को बहाते थे। तो चंदन वहाँ से कृष्ण बलराम और जगन्नाथ जी के जो उत्सव विग्रह मदन मोहन इनके साथ 5 लिंग शिवलिंग जाते हैं, तो बड़ा कहानी है किसलिए वो चंदन यात्रा होता पुरी में है। पुरी में चंदन यात्रा प्रकृत में कहते कि पांडव लोगों ने जो रहते थे अज्ञातवास में, कहाँ थे अज्ञातवास में विराट राज्य में, तभी बाद में जो उनको पता लगा कि यही पांडव लोग है, तो विराट राजा ने कहा कि पांडव लोग तो कृष्ण की बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए कहे कि आप लोग कृपा करके मेरे राज्य में आप कृष्ण को बुला दो, एक बार कृष्ण यदि मेरी राज्य में चरण रखेंगे मेरी हमारे प्रजा और मैं सब धन्य धन्य हो जाएंगे, सभी के कल्याण होगा। इसलिए कृष्ण आएंगे, इसलिए विराट राजा ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया था वहाँ पर, बोट फेस्टिवल आदि सब कुछ हुआ था, चंदन उत्सव कृष्ण पधारते, कृष्ण को प्रत्येक दिन चंदन लेप करके वहाँ बोट फेस्टिवल मनाए थे, उसी उत्सव मनाया जाता है पुरी में भी। तभी इसलिए पांडव लोग ने साधारणतः इनको कहा जाता है कि पांच पांडव ये शंकर जी का ही अंश है, सो उन्हीं के प्रतीक रूप में वो शिवलिंग सब रखते हैं उसमें, और ये तो वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये पुरी में मनाया जाता था जो चंदन यात्रा, तो वहाँ जाके चंदन लेके आने के लिए माधवेंद्रपुरी को कहे हैं गोपाल ने, तो माधवेंद्रपुरी तो उस समय लगभग 80 से अधिक उम्र हो गया था उनको, वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर भी इतनी प्रेम से उन्मत्त हो गए कि गोपाल कहा है, गोपाल मुझे कहा है चंदन लेके आऊंगा, जाऊंगा पुरी चंदन लेके आऊंगा। किस में जाएंगे, फ्लाइट में है, ट्रेन में राजधानी, पैसेंजर ट्रेन भी नहीं, कुछ भी ट्रेन था नहीं, कैसे जाएंगे, चरण बाबू के बस पैदल में, यहां से गोवर्धन से पैदल में कहां पूरी। लेकिन वो बात नहीं, प्रेम में इतने उन्मत्त थे कि गोपाल मुझे चंदन मांगा, गोपाल चंदन मांगा, मैं चंदन ला कि गोपाल का शरीर में लेप करूंगा, ये उन्मत्त प्रेम से होकर चले सेवा में लगा दिए, और जो ब्रह्मचारी दोनों को सेवा में लगा के बोले मैं आने तक सेवा करते रहो गोपाल का, चले बस। जाते जाते बहुत लंबा कथा है, तो उन्होंने बंगाल होकर गए, बंगाल में जाकर उनको अद्वैत आचार्य को दिखा दिए, अद्वैत आचार्य की भी वो गुरु है माधवेंद्रपुरी है, वरिष्ठ गुरु पार्षदों के सभी के वो गुरु है माधव, मैंने अद्वैत आचार्य से लेकर पुंडरी के विद्यानिधि कई जितने सो वरिष्ठ वैष्णव देखेंगे सो उनके शिष्य हैं सब। तभी वो रेमुणा पहुँचे, रास्ते में रेमुणा आएगा, बालेश्वर होकर जाएंगे, तो रेमुणा पहुँचे, रात्रि विश्राम की है वहाँ पर, शाम के समय पहुँचे, उस समय भोग उतार रहा मैंने संध्या भोग लगने वाला था, मंदिर का स्वच्छता मंदिर के सेवा परिपाटी सब देखकर माधवेंद्र पुजारी को पूछे आप कैसे क्या सेवा करते हो, गोपीनाथ कर बहुत सुंदर हैं सेवा पूजा लग रहा है इधर हो रहा है, आप क्या क्या भोग लगाते हो भगवान को, तो उन्होंने कहा कि जितने भी भोग तो लगते रहता दिन भर, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ भोग जो कि पृथ्वी में और कहीं भी नहीं लगता है केवल हमारा गोपीनाथ के पास लगता है हैं, वो है संध्या के समय में हैं रस, हमने जो खीर एक प्रकार की खीर प्रस्तुत करके हमें गोपीनाथ को लगाते, खीर नहीं है वो राबड़ी भी नहीं कि खीर भी नहीं है, क्या है? हाँ, एक माने जो दूध में पूरा दूध, एक किलो दूध में 50 ग्राम चावल डालते बस, है वो चावल पर उसमें पूरे दूध में ही उगाल उगाल के उस पर उसके साथ मिल ही जाता, पता नहीं चलता रहा, चावल का कोई अंश नहीं रहता है। वो चावल भी ऑर्डिनरी चावल नहीं होता है, वो चावल स्पेशली बनाया जाता है खेती में गोपीनाथ के लिए, खीर के लिए। तो बोले वो खीर और कहीं नहीं बनता, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने, तो मन में हमारा चिंतन खाली कि आया यदि मैं तो अजाजित प्रति रखा हूँ, भोग लगने के बाद न मांगते हुए यदि कोई अजाजित भाव से मुझे थोड़ा दे देगा, टेस्ट करूँगा, तो मेरा गोपाल के लिए भी ऐसा ही खीर बनाऊँगा। लेकिन तुरंत ही सोचे ये क्या, मेरे मन में चिंतन आ गया, मैं बड़ा अपराधी बन गया हूँ, अभी भोग लगा नहीं, मैं खाने की इच्छा कर लिया, धिक्कारते हुए स्थान छोड़कर आरती दर्शन कर ही भाग गए। जाके वहाँ से वो सब्जी मार्केट के चाली के अंदर एक वृक्ष के, वो वृक्ष आज अभी अंतर्ध्यान हो चुका है, वो वृक्ष के नीचे बैठे। यहाँ से गोपीनाथ को रहा नहीं गया, माधवेंद्रपुरी की इच्छा था कि उनका खीर का टेस्ट करने के लिए। रात को भोग मने सब जो जा रहे थे सब, आरती के बाद खीर आटिका सब निकाल गए, निकाल लाए, देखे कि 12 आटिका भोग लगा था, उसमें से कितना है 11 है। सो कोई और एक कहाँ गया, सब लोग झगड़ने लगे, कौन लिया, कौन किसी कस्टमर को डोनेशन वोशन दे दिया लगता है, कहाँ गया है सब लोग। लेकिन वो तो सब भाग गए, लेकिन धड़ार अंचल है उसको छुपाया था, धोती गोपीनाथ का धोती ऐसे बड़े बड़े बड़ोर वाले होते हैं पहनते हैं, गोपीनाथ ही छंदा चरण में खड़े रहते हैं, दोनों चरण के बीच में वो रखे दिए थे किसको, एक एक जो खीर का पात्र को रखकर उसके ऊपर अपने धोती को डाल दी बस, कौन देखेगा, बस वहाँ चुपके रह गया है। वो धड़ार अंचल, यहाँ शब्द आता है धड़ार अंचल, वहाँ तो कोई लगता था पर्दा का पीछे, पर्दा का पीछे नहीं है, धड़ा माने धोती का बॉर्डर जो होता है उसको धड़ा कहते हैं, तो बोटी वो धोती का बॉर्डर कैसे डाल दिया इसका पर है। वो पुजारी के पूछोगे कि भाई भाई कैसे कैसे खीर को चुरा के रखा था ये गोपीनाथ, वो बता देगा आपको ये दोनों। तो इसलिए गोपीनाथ जी स्वप्न आए, फिर पुजारी को कहे कि हेड पुजारी बोले ए पुजारी रात को 12 बजे उठो, मेरे आज एक महान भक्त आया था मंदिर में, पहचाना नहीं, तीनों जगत में ऐसा कोई भक्त मेरा नहीं है, माधवेंद्रपुरी अजाचित प्रति है, लेकिन मेरे खीर थोड़ा चखने की इच्छा था, वो अपने के लिए नहीं है, सोचा कि ऐसा टेस्ट करके फिर आप मैं गोपाल के रूप में उसकी गोवर्धन में पूजा पाता हूँ, मेरे पास में भोग लगाने के लिए उसकी इच्छा है, दिन भर कुछ खाया नहीं भी है, ये खीर पात्र में छुपा के उसी के लिए रखा हूँ, मेरे धड़ा का मेरे धड़ा के अंचल को छुपा के रखा हुआ, इसको ढक दिया हूँ, तुम जाकर वहाँ से खीर पात्र लेकर माधवेंद्रपुर को खिला दे दो, जाओ ये मेरा आदेश है। पूजा जी तो पागल हो गया, बोला अरे हजार हजार साल में आप पूजा किए, हमारे कितने वंशज पूजा किए, कभी को गोपीनाथ ने किसको स्वप्न में किसको भी कहा नहीं कुछ, आज ऐसा कौन भक्त आ गया जिसके लिए गोपीनाथ को बोलना पड़ा हमको, हैं बोला ये स्वप्न है कि सत्य है कि क्या है, गया स्नान करके जाके खोला, खोल के जाके देख रहा कि ठीक गोपीनाथ जी ने जैसा ही स्वप्न में बताया ऐसा ही दोनों चरण छंदा चरण के बीच में वो पात्र रखा हुआ है, धोती को निकाल वो उठाकर तो पत्र को उठाए कर आए, पागल हो गया वो भी सिर में रख कर, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए हमारा गोपीनाथ चोर बन गया है, पहले हमें इसको गोपीनाथ कहते थे, अभी कहेंगे क्या खीर चोर, गोपीनाथ कौन है माधवेंद्रपुरी। हाँ माधवेंद्र बोलते बोलते जा रहा था, माधवेंद्रपुरी परिचय दिए हमें, बोले धन्य धन्य माधवेंद्रपुरी, तुरंत ही माधवेंद्रपुरी है खीर पात्र देकर प्रणाम करने प्रणाम किया है, कहा कि मैं जा रहा हूँ मंगल आरती में, फिर मेरा आना पड़ेगा, तुम सुबह आना मंदिर में, फिर आओ और ज्यादा खीर दूंगा। माधवेंद्रपुरी कहे कि अच्छा कहे कि देखो पुजारी तो आ गया, माधवेंद्रपुरी खीर को खाए, लेकिन गोपीनाथ मेरे लिए खीर चोरी किया, सोचते सोचते प्रेमाश्रु उनके आंख से बहने लगे, लेकिन सोचे मैं यदि शाम सुबह तक रहूंगा इधर मंगल आरती में जाऊंगा, फिर मेरे प्रतिष्ठा और बढ़ेगा, हजारों लोग फिर मेरे को चरण प्रणाम करते रहेंगे, कोई पैर छूने के चाहेंगे, कोई क्या करेगा पता नहीं, यहाँ से भागना है। वो खीर का खीर को आस्वादन करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो मिट्टी का बर्तन था उस टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़े को बांध दिए गामछे में एक साइड में। रास्ते में पूरी जाते थे, रास्ते में प्रत्येक दिन एक एक टुकड़ा खाते थे, स्मरण करते थे गोपीनाथ मेरे लिए कैसे चोरी किया है। रोते रोते गए, वहाँ जाकर पूरी में पहुँच गए, तो पूरी में सब लोग खबर ये पहुँचने के पहले पहुँच गया उधर खबर है। ये तो छुपाना चाहते थे, नई बात किसको नहीं पता चलना चले, लेकिन वहाँ बोले कि यार वहाँ जाके देख रहे पुजारी लोग बात कर रहे हैं, अरे कोई व्यक्ति ऐसे माधवेंद्रपुरी है, वो गोवर्धन में उसके लिए कृष्ण ने गोपाल के रूप में प्रकट हुई है, वहाँ पूजा करता था, यहाँ आया था, वो ये गोपीनाथ में उसका नाम उसका उसके लिए गोपीनाथ ने क्या किया, खीर चोरी कर लिया, ओ भाई पुरी में आ रहा है, पुरी में चंदन लेने के लिए आया है, आएगा तो कहाँ है। माधवेंद्रपुरी सुन रहे थे, बोले अरे क्या करो, फिर तो यहाँ भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा मेरा, लेकिन गोपाल के लिए तो चंदन लेना ही पड़ेगा। ये जो अद्भुत नृत्य गीत गाने लगे नाचने लगे, परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ा, पहचान ली है। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे उन्मत्त नृत्य किए थे, तो माधवेंद्रपुरी उन्मत्त नृत्य करने लगे, इनको देखकर पता लगा ले, बोले तुम माधवेंद्रपुरी हो, पूछे पुजारी आप माधवेंद्रपुरी है ना क्या, बोले हाँ मैं आया हूँ गोवर्धन से, मेरे को उपाल के लिए क्या चाहिए, चंदन चाहिए, आप लोग जगन्नाथ के पास में जो चंदन लेप देते हो मुझे थोड़ा चंदन दे दो मेरे गोपाल के लिए। पुजारी लोग तो उठा लिए पकड़ी, बोले हम सुने तुम्हारे बारे में बहुत है, अच्छा तुम ही माधवेंद्रपुरी है, चलो चलो है। बहुत प्रसाद खिलाए उनको जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ पर प्रसाद कमी नहीं है। राजा को जाकर खबर दी है कैसे माधवेंद्रपुरी आया, तो उसका गोपाल के लिए चंदन चाहिए, राजा से ऐसा ही जैसे हो चंदन का व्यवस्था कर दी, एक मोहन चंदन 20 तुला कपूर, एक मोहन माने 37 किलो हाफ, आधा 37.5 किलो है चंदन, और कपूर ने कपूर घिसने के लिए चंदन के साथ कपूर लेके घिसते थे, तो व्यवस्था कर दिए, लेकिन कहे कि रास्ता में फिर ये बुढ़ा आदमी ये तो ये वृद्धावस्था में ये चंदन को बहे के कैसा चलेगा रास्ता में, तो इसलिए 2 व्यक्ति उनके साथ में भी दिए, वो लोग भी वृंदावन आना चाहते थे, एक आदमी के एक ब्राह्मण दिए और एक साधारण व्यक्ति जो कि चंदन को ऐसे सिर में लेके चलेगा, और तो ऐसे ही 2 व्यक्ति के साथ फिर इनको भेज दिए। राजा ने अपने पत्र से उल्लेख दे दिया है कि रास्ता में कोई इनको परेशान नहीं करना, ये राजा ने राजा की तरफ से इनको ये चंदन उनके गोपाल के लिए दान दी गई है, ऐसा करके पत्र भी लिख लिया। लेकिन आते आते फिर पहले अरे चले जा रहा हूँ चले जाऊँगा, थोड़ा सा गोपीनाथ को और थे एक बार तो दर्शन कर लूँ, तो गोपीनाथ के पास में पहुँचे फिर शाम के समय। अब पुजारी लोग पहचान लिए, बोला यही है हर पुजारी पहचान लिए, बोले यही है माधवेंद्रपुरी आ गया है, सारे भाग गए सब दौड़ भाग गया सब पुजारी लोग, बोले माधवेंद्रपुरी आ गए माधवेंद्रपुरी आ गए हैं। वो उस दिन 12 वाटी का भोग जो लगा था पूरा 12 वाटी का लाके उनके सामने रख दिए, बोले आज पता नहीं फिर बाद में और गोपीनाथ और कुछ करेगा। तो बोले ठीक है हम तो 3 आदमी हैं, 3 बटे 3 दे दो और आप सब लोग हैं। लेकिन माधवेंद्रपुर इसी दिन खीर खाए, उस समय तो उस धर्मशाला कुछ नहीं था, रहने के लिए बोली कि सोएंगे के मंदिर में रहो, सोना मना है लेकिन कहेंगे नहीं ये बड़ा प्रेमी भक्त है ये मंदिर में सो सकता है, ये इसका गोपीनाथ का बड़ा रिलेशन अच्छा संबंध है, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी विश्राम कर रहे थे रात को। ब्रह्म मुहूर्त में फिर उनका गोपाल सपने में आया है। चैतन्य महाप्रभु ये कहानी कह रहे किसको, गदाधर पंडित नित्यानंद और जगदानंद पंडित मुकुंद, 4 लोग जो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु के साथ जा रहे थे, उन्हीं की खीर चोरा गोपीनाथ में कहानी कह रहे हैं। महाप्रभु कहते कि प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार, दुग्ध दान छोड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कल कैल, जार प्रेमे बस हया प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला, जार लगी गोपीनाथ खीर कैल चोरी, सही हेतु नाम हईल खीर चोरा करी। ये गौरांग महाप्रभु के मुख निश्चित वाणी है। महाप्रभु देखिए माधवेंद्रपुरी के समान भक्त तीनों जगत में कोई नहीं है, आप विचार करो नित्यानंद कितनी भाग्यवान है, 3-3 बार भगवान स्वप्न में आए, एक बार तो आके कहे कि झाड़ी में छुपा हूँ, दूसरे बार आए कहे कि जाओ चंदन लेके आओ पुरी से। तीसरे बार आए गोपीनाथ मंदिर में, फिर सपने में आए कहे कि है तीन बार सपना आए कि क्या कहे तीसरे बार कहे कि महादेवेंद्र तुमको ये चंदन गोवर्धन तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया का ठीक कुछ दिन पहले था, कहे कि ये चंदन तुम यहीं पर घिसो, यहीं पर घिस कर कपूर के साथ गोपीनाथ के शरीर में लेप दिया करो। गोपीनाथ हमारा जय एक ही देह है, यहाँ के चंदन दिले मोरो ताप हवे क्षय है। जब ये गोपाल गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर गोपाल का शरीर, हमारे दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही व्यक्ति है, नंद की लाला है। तुम उधर गोपीनाथ के शरीर में ही चंदन लेप करो। अब अक्षय तृतीया आने वा आ रहा है, वहीं से प्रारंभ करो। जगन्नाथपुरी में भी अक्षय तृतीया से ही लेप देते हैं, तो गोपीनाथ में भी माधवेंद्रपुरी ने सुबह सुबह उठकर पुजारी को डाककर कहे, बुलाकर बोला कहा कि देखो पुजारी, आप मेरा गोपाल ने मुझे ऐसे ही कहा है, तो मेरा गोपाल और तुम्हारा गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, और ये चंदन घिसकर यहीं पर गर्म सीजन में गर्मी में किसका शरीर में लेप दिया जाएगा, गोपीनाथ के शरीर में है। पुजारी लोग बड़ा खुश हो गया, इतने चंदन कहाँ से मिलता था है? मोड़ा है जो चंदन पूरा पूरी से राजा ने भेज दिया है, क्योंकि ऐसा क्यों गोपाल किया, क्योंकि वो सब मुस्लिम शासन चलता था और ब्रह्मणा से यहाँ तक फिर आने के लिए बहुत परेशान होता था माधवेंद्रपुरी को है, रास्ते में कितना लोग कोई चंदन छीन लेता था, तो इसलिए वही कहे कि गोपीनाथ के शरीर में लगा हुआ है भगवान। तो इसलिए माधवेंद्रपुर रहे, दो लोग उनके साथ थे, और कहे दो लोग और दे दो, मैं इनका पेमेंट मैं कर दूंगा। डेली चंदन घिसने लगे, कर्पूर चंदन घिस के लेप देने लगे, किसमें, गोपीनाथ के शरीर में है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में ये चंदन यात्रा की महोत्सव कहाँ से प्रारंभ हुआ है, हैं, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में रेमुना से, वहीं से शुरुआत। वो विग्रह तृतीया युग के हैं, तृतीया युग के विग्रह राम सरांकित विग्रह है, इसका भी बहुत बड़ा कहानी है। राम स्वयं रामचंद्र जी ने धनुष में तीर में अंकित करके विग्रह को बनाए, वो गोपीनाथ के विग्रह हैं। सीता जी को बताए, सीता जी ने एक बार शाम के समय में चित्रकूट में भगवान के मुख में थोड़ा मुस्कान आया, देखते मुस्करा रहे थे ग्वाल बाल लोग गाय को लेकर जा रहे थे, बोले हंसी क्यों हंस दिए, हंसने का तो कुछ कारण नहीं है। बोले कि रामचंद्र ने कहे कि देखो अगला जो युग आने वाला है द्वापर युग, उस समय में मुझे भी यही गाय के पीछे ऐसे ही भागना भटकना पड़ेगा, उसी को स्मरण करके मुझे हंसी आ गया। तो बोले कैसे कैसे होगा, कैसे गोपाल बनोगे, क्या करो, थोड़ा बताओ ये सर। रामचंद्र जी ने इसलिए अंकित करके गोपाल का विग्रह अंकित, वो बड़ा कहानी है वो जो भी है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी के, माधवेंद्रपुरी ने ही ये रथ ने ये जो चंदन यात्रा उत्सव को मैं बहुत ब्रीफली कहा है कि प्रारंभ किए थे कहाँ से, गोपीनाथ मंदिर में। इसके बाद जितने भी हमारे गौड़ी आचार्य हैं ये सभी लोग ने ये उत्सव को स्वीकार किया हमारे गौड़ी संप्रदाय में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज जितने, इसके बाद प्रभुपाद जी ने आ गए, प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कन के सभी मंदिर में ये उत्सव रखा है। अक्षय तृतीया के दिन से कितना दिन तक, कम से कम 21 दिन तक लेप दिया जाएगा। गोपीनाथ के शरीर में तो पूरा गर्मी का सीजन चंदन लेप हुआ था, बाद में माधवेंद्रपुरी फिर चले गए थे पुरी, पुरी से फिर वापस आए, माधवेंद्रपुर के समाधि भी उधर ही है, कहाँ, रेमुणा में है। तो इस प्रकार आज संक्षेप में आपको चंदन यात्रा की कहानी कैसे कहाँ शुरू हुआ मैं आपको बताया, लेकिन आज एक विशेष तिथि है, क्या, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय का क्या होता है, कभी क्षय, आज के दिन जो कुछ भी आप करोगे, सुकृति करोगे, पुण्य करोगे, माला जपोगे, जो कुछ करोगे, इसका सुकृति का कभी इसकी फल का कुछ हानि होने वाला नहीं है, हैं? आपको आज के आज ये अक्षय तृतीया को भी ज्योतिष शास्त्र में कहते कि आए अनुपुच्छा तिथि, अघात अघात तीज, इस समय कोई घात नहीं होना, किसी भी काम करो, आज विग्रह की अर्चना करो, विग्रह की इंस्टॉल करो, या कोई शादी विवाह का उत्सव, किसी प्रकार के मंगल, ए क्या कर रहे तो कोई भी मंगल मांगलिक कार्य आज करने के लिए हैं मनाने, आज सब कोई भी कार्य कर सकते, विद्या आरंभ करो, जितनी प्रकार की घर आरंभ करो, शादी करो, कुछ भी, किसी प्रकार भी मंगल कार्य आज ज्योतिष के पास जाने का जरूरत नहीं है, आज तो उड़ीसा में बांग्ला ओसाड़ी जैसे आज की खेती, आज के दिन सबसे पहला बीज भी डालते हैं, किसमें जमीन में बीज डालते हैं, सभी प्रकार की हरिभक्ति विलास में लिखते हैं कि ये सनातन गोस्वामी वैशाख मासी शुक्लायांग तृतीयायांग जनार्दनम जवान उत्पादयन मास जुगंच कृतवान कृतम बहु लोका त्रिपथागम पृथिव्यांग अवतरयेत तस्यां कार्य जवई होमं जवई विष्णु समर्चयेत प्रवृत्ति तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन विशेष रूप में आज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ किया है। जव शस्य, जब जव पांच जव समस्त शस्य में से सबसे पवित्र शस्य माना जाता है, किसको जव, आज ही जव का उन्नत उत्पादन किया थे, किए थे ब्रह्मा जी ने, आज ही से ही जुगंच कृतम कृतवान, कृत जी को कौन सा है सत्य युग, कोई कहते कृता का आचार त्रेता भी कोई मानते हैं, कोई कहता आज सत्य युग भी प्रारंभ हुआ था, आज से तृतीया युग भी इसी तिथि से। तब इस प्रकार त्रिपथ गामिनी कौन है, गंगा है, बहु लोका सारी त्रिपथ तीनों लोक को भेद करती है, मर्त्य स्वर्गो लोक स्वर्गो मर्त्य पाताल को भी, त्रिपथगामी गंगा आज धरती को स्पर्श की थी पृथ्वी को है। आज इस प्रकार बहुत कुछ है, आज ब्रह्मा सत्य युग का प्रारंभ हुआ, महाभारत का राइटिंग, महाभारत का लेखा आज कौन प्रारंभ किया, कौन लिखा महाभारत को, वेदव्यास लिखे, गणेश जी लिखे, वेदव्यास जी कह रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, कहां पर है सम्यप्रास आश्रम, जो बद्रीनाथ जाओगे वहां देखोगे मानगांव में। तो महाभारत का आज लिखना प्रारंभ हुआ, आज परशुराम का जन्मदिन है, परशुराम जयंती है, आज भी हयग्रीव अवतार का भी आज ही प्राकट्य है, आज अन्नपूर्णा देवी का भी आविर्भाव है, आज द्रौपदी को अक्षय पात्र है मिला, अक्षय पात्र द्रौपदी को आज मिला था, इनके बारे में तो खाली अक्षय तो कहे तो इनको जितना है, आज कुबेर नहीं धनाध्यक्ष धनाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष किसका, देवताओं के, लक्ष्मी को पूजन करके संतोष किए तो कुबेर को, कुबेर ने आज धनाध्यक्ष बने हैं। आज इस आज यदि कोई दान करेगा उसके लाखों गुण उसको मिलने वाला है और अशेष गुण मिलेगा उसको है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप में दान करने का विशेष महत्व है। कुबेर कुबेर को धनाध्यक्ष बना, सुदामा आज जाकर मिला था किसको, कहाँ को, कृष्ण को मिला था, कहाँ द्वारका में, ये सब थोड़ा थोड़ा लीला कहेगा तो ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा है। सुदामा आज कृष्ण को मिले थे, आज का दिन कहते कि द्रौपदी का, द्रौपदी को वस्त्र धारण आज दुशासन किया था और भगवान ने इनकी रक्षा किए थे इतने आए। आज के दिन अक्षेत्र दिन भी श्रील प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, कहाँ पर, झांसी में 1953 में, 1953 में अक्षय तृतीया के दिन प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज का एस्टेब्लिश किया था। आज जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का, जगन्नाथ का रथ का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, आज बड़ा एक जगह में, सब जगह में चंदन लेप दिया जाता है, एक जगह होता है चंदन निकाला जाता है भगवान के शरीर से, आज निकाल के पूरा विग्रह को, सारा साल भर चंदन लेपा रहता, प्रत्येक दिन चंदन लेपते हैं, आज के दिन के शरीर से चंदन निकाल देते हैं, कौन सा सिंहाचलम में है बराह नृसिंह विग्रह है, तो बराह नृसिंह विग्रह का डेली चंदन उसमें लिपता है, बड़ा कहानी है वो, तो कहना तो वो एक क्लास होगा, अरे वो छोड़ो, तो चंदन लिपते हैं, लेकिन आज के दिन क्या करते हैं, हमारा चंदन दर्श होता है ना, उनका पूरा शरीर से चंदन निकाल के इनको अभिषेक कर स्नान करके पूरा विग्रह, भगवान के संपूर्ण विग्रह दर्शन होता है, बराह नृसिंह विग्रह सिंहाचलम में आज के दिन दर्शन, साल में एक बार इनके दर्शन मिलता है, नहीं तो सब पूरे डेली दर्शन आप करें, लेकिन चंदन पूरा चंदन में ही ढंके रहते हैं। आज बद्रीनाथ की दर्शन खुलता है, बद्रीनाथ जी के दर्शन आज से खोलेगा, और नारद मुनि घूमते घूमते अक्षय तृतीया में भ्रमण करते थे, ब्रज में अलग अलग जगह जा रहे थे, जाके देखे नंदगांव में जा रहे थे तो पावन सरोवर को थोड़ा देखे, पावन सरोवर में है वो पता नहीं कि घोड़ा है कि गधा है क्या है, वो स्नान कर रहा था, डुबकी लगा था बार बार, कंप रहा था, फिर डुबकी लगा रहा था, है से करता, और बड़ा आनंद में डुबकी लगा रहा था बार बार, है बार बार डुबकी लगा। बोले कौन है? नारद जी ने थोड़ा दिव्य दृष्टि में देखे, पहचान गए, बोले ये तो तीर्थराज है। बोले तीर्थराज क्या कर रहे हो आप इलाहाबाद? तो सारे दुनिया के लोग आपके पास आते, गंगा जमुना सरस्वती का संगम, तो वो सभी आपके जाके स्नान करते, आप इधर क्या कर रहे हैं? आज अक्षय फल है, आज क्या है? अक्षय तृतीया। सारे लोग सभी जगह का पाप लाके यही स्नान करते मेरे पास, प्रयाग में छोड़ के जाते मेरे पास, है इसलिए मैं भी स्वयं को पवित्र करने के लिए यहाँ पर, पावन होने के लिए यहाँ पर आया। कहाँ? पावन सरोवर में, जहाँ कृष्ण बलराम नंद महाराज के साथ डेली स्नान करते हैं। इस जल में स्नान करके मैं भी अपने को पावन मानता हूँ, है इसलिए ब्रज के लोगों को कहीं तीर्थ करने के जाने का आवश्यकता नहीं है। ब्रज के राज में भी जो भय करोड़ों कुंभ मेला का फल वो नहीं दे सकता है, ब्रज की रज का जो फल है, रज का जो बोले शरीर में यदि कोई ब्रज रज को कल माखी लिया, गड़ा गड़ी दिया, इसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ब्रज की रज में पूरा लोतप्रोत होकर आए होने के अभी तक स्पृहा नहीं आया, उसको कृष्ण प्रेम कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे मेरा सर गंदा हो जाएगा, मारे क्या है ये ड्रेस, है ब्रज में ब्रज की महिमा बहु है। सभी तीर्थ लोग जाते प्रयागराज के पास, लेकिन ब्रज नहीं जाता है, है? वो कंप्लेन भी किया भगवान के पास में, भगवान कहे कि वो प्रयाग को मैं बनाया था तीर्थों की राजा बनाया था, और मेरा घर का राजा थोड़ी बनाया था, ब्रज तो मेरा घर है, हैं? ब्रज मेरा घर है, भगवान के धाम है, यहाँ पर भगवान ही स्वयं रहते। बोले मेरा धाम, मेरा घर का राजा थोड़ी बनाया था उसको, है तो इसलिए वो समझ गया, इसलिए वो भी आकर आज अक्षय तृतीया में इधर स्नान करता है। कहाँ? पावन सरोवर में, है। आज सभी लोग अक्षय तृतीया के बारे में, अक्षय तृतीया की तो बहुत महिमा है, लेकिन सारे कहना संभव नहीं है, है। आज भी जो देवी भक्तों कहते कि आज महिषासुर का वध आज ही हुआ था, देवी ने आज मारा था किसको, ऐसा ही अशेष महिमा है आज का दिन में, कौन सा? अक्षय तृतीया का दिन, है। तो इसलिए आप लोग बड़े जिसके सबके सख्य उतावक, हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम जप करना चाहिए, और जो लोग जो कुछ दान करना चाहते दान भी करना चाहिए, आज विशेष दान का महिमा है, लेकिन सबसे वस्तु दान से किसका ध्यान करना चाहिए श्रेष्ठ है? ज्ञान, ग्रंथों की दान करना चाहिए, गीता भागवत के ग्रंथों की दान करना चाहिए, और वस्तुदान में सबसे श्रेष्ठ अन्नदान को माना जाता है, अन्नदान। तो हरे कृष्ण, समय हो चुका है आपका, महाप्रसाद आ गया ऑलरेडी, है अभी ठीक है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।